तो कल हम भक्ति के चौथे लक्षण की चर्चा कर रहे थे, चौथी नहीं हाँ चौथे सुदुर्लभा, और हम देख चुके हैं कि इसके दो कारण क्या है, और अब हम चर्चा करेंगे भक्ति के पांचवे लक्षण का। पांचवा लक्षण है बताइए, सुदुर्लभा तो अभी हो गया, चौथा है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्र मतलब क्या है, किसी को पता है? सांद्र बहुत ही घना, घना होता है कोई, उसको सांद्र कहते हैं। आनंद, जो आनंद बहुत ही घना हो, कंडेंस्ड ब्लिस। आपने कंडेंस्ड मिल्क तो सुना होगा ना, इस्तेमाल किया होगा घर में, है ना, कंडेंस्ड मिल्क। तो ये है कंडेंस्ड ब्लिस, हैप्पीनेस, बहुत घना आनंद, विशेष आत्मा। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा का मतलब है कि भक्ति से जो आनंद उत्पन्न होता है वो बहुत ही घना है, बहुत ही तीव्र है, और इससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो और किसी भी आनंद की तुलना में बहुत ही अधिक है, अतुलनीय है। तो रूप गोस्वामी भक्ति के आनंद की तुलना केवल एक कहने के लिए कर रहे हैं, ब्रह्मानंद के साथ। तो कोई पढ़िएगा रूप गोस्वामी क्या कहते हैं ब्रह्मानंद और भक्ति के आनंद के बारे में।
रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति के सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता।
तो ये उपमा जो है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कि एक बूंद कहा और समुद्र कहा, दोनों की तुलना तो कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मानंद जो कि बहुत ऊंचा माना जाता है ज्ञानी लोगों के लिए, उसका पूरा सागर जो है वो भक्ति की एक बूंद से भी तुच्छ है। तो ये सांद्रानंद विशेष आत्मा की चर्चा हिंदी किताब में है कृष्ण भावनामृत में, सुख सुख प्रदत्व, और अंग्रेजी में है द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। तो ये है सांद्रानंद विशेष आत्मा। वास्तव में ये हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम या निराकार ब्रह्म से एक होने की बात, ये शीर्षक वास्तव में हमें लग सकता है कि विषय ये है, लेकिन विषय भक्ति का आनंद है, केवल इससे तुलना की गई है, इसलिए यहां शीर्षक ऐसे लिखा हुआ है। हिंदी में सही है, कृष्ण भावनामृत में सुख। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज हरि भक्ति सुधोदय मुच कहते हैं, पढ़िएगा कोई क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज।
हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ।
तत् साक्षात करणाल्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखम गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो। यह है श्लोक जो प्रहलाद कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद है, सुखानि ब्रह्मणि, जो ब्रह्म सुख है वो कैसे है, गोष्पदायन्ते, एक गाय के बछड़े के खुरों के नीचे जितनी जगह होती है उस खड्डे में, उतना पानी अगर वहां हो तो कितना पानी है, ये कुछ भी नहीं है। परंतु त्वत साक्षात्करण आह्लाद, आपका साक्षात दर्शन करने से जो आह्लाद या दिव्य आनंद प्राप्त होगा वो कैसे है, विशुद्ध अवधि, अवधि मतलब जल, और विशुद्ध मतलब जो बहुत ही शुद्ध है, अति शुद्ध है। तो एक अति शुद्ध आनंद के सागर के बराबर है आपका दर्शन करना। और ब्रह्मानंद का सुख कैसा है, गोष्पदायन्ते, एक गाय के बछड़े के खुरों के नीचे जितनी जगह है उस खड्डे में उतना। ये प्रहलाद महाराज का कथन है। उसी प्रकार से श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार माने जाते हैं, वो भी अपने टीका, भागवत की टीका भावार्थ दीपिका में कुछ कहते हैं। भावार्थ दीपिका ये बहुत महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है श्रीमद् भागवत के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को बहुत मानते थे और कहते थे कि आदि टीकाकार श्रीमद् भागवत के श्रीधर स्वामी हैं। तो इसलिए ये भावार्थ दीपिका बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और इसमें क्या कहते हैं पढ़िएगा। और कोई
हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े ऋण की तरह तुच्छ मानते हैं।
त्वत् कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदः। महामुदः जो भक्त होते हैं वो बहुत ही मुदित होना यानी आनंदित होना। महामुदः मतलब जो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं भगवान के भक्त, क्या करके, भगवान के कथा, भगवान के कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में विहार कर रहे हैं, रमण करते हैं। तो ऐसे जो भाग्यशाली भक्त हैं इनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और इस आनंद के सामने ये जो चतुर वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कैसा है, त्रिणोपमम। तृण मतलब क्या है, घास, तुच्छ है। तो चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान के सुंदर कथाओं के श्रवण कीर्तन आदि के सामने तुच्छ है, एक घास के तिनके के बराबर है। थैंक यू। तो इससे हम जान सकते हैं कि यहां तुलना रूप गोस्वामी पाद करते हैं एक और भक्ति के आनंद की और दूसरी ओर मोक्ष आदि सुख की। और भक्ति की का आनंद इतना विशाल है, ये विशुद्धावधि, कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये है सांद्रानंद विशेषात्मा, भक्ति का पांचवा गुण। और भक्ति का छठा गुण कौन सा है, श्री कृष्ण आकर्षिणी। इसका क्या मतलब है, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है, तो कोई इसको पढ़िएगा।
श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने वाली है।
हाँ, तो कृष्ण का मतलब क्या है, सर्व आकर्षक है ना, सही है। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। परंतु भक्ति इतनी आकर्षक है श्री कृष्ण के लिए कि शुद्ध भक्ति सर्व आकर्षक श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो ये है भक्ति की शक्ति, कि एकमात्र भक्ति ही है इस दुनिया में या इस दुनिया से परे भी, जब भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए।
कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, इसलिए भक्तगण में मदन मोहन मोहिनी कहते हैं।
बहुत अच्छा। तो देखिए, भक्ति, भक्ति के प्रतीक कौन है? भक्ति के सर्वोच्च शिखर के मूर्तिमान रूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी स्वरूप है। आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण के तीन प्रकार की शक्तियां हैं। थोड़े दिन पहले इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कौन से हैं ये तीन प्रकार की शक्तियां? एक है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है? नहीं, अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत, ये आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। और बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति। और तटस्था शक्ति क्या है? जीव शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति के तीन भाग हैं। तो तीन विभाजन किए गए हैं। कौन से है ये तीन विभाजन आध्यात्मिक शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के? संवित, संधिनी, लादिनी। अच्छा, कोई आप बता सकेंगे कि संधिनी क्या है, संवित क्या है, लादिनी क्या है? अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे विभाजन कीजिए। यहाँ कोई लिखेंगे? चौक है यहाँ पर, कोई लिखेंगे? कृष्ण की शक्तियां ऊपर लिखिए, फिर अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। और अंतरंगा शक्ति के नीचे भी तीन भाग, संवित, संधिनी, संवित और लादिनी। तो ये सबको पता है ना। अब ये बताइए कि संधिनी शक्ति क्या है? संधिनी शक्ति का कार्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है ना? तो सत क्या है? जब हम कहते हैं कि सच्चिदानंद है भगवान, तो सत का मतलब क्या है? ट्रू, सत्य। सत्य मतलब क्या? इटर्नल, जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। अंतरंगा, ठीक है ना? तो सत मतलब जो शाश्वत है, चित मतलब नॉलेज, ज्ञान, जो ज्ञान से पूर्ण है, और तीसरा आनंद, जो दिव्य आनंद से पूर्ण है, आनंदमयोभ्यासात। तो भगवान के तीन शक्तियां हैं, संधिनी, संवित, लादिनी। संधिनी से भगवान के सत का अस्तित्व होता है। और थोड़े बड़े अक्षरों में लिखा अंतरंगा, ताकि सभी देख सके। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान के सारे जो अध्यात्म चीजें हैं, उनका शाश्वत अस्तित्व होता है। संवित शक्ति वो शक्ति है जिसके माध्यम से श्री कृष्ण अपने आप को जानते हैं, और श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, और जिस शक्ति के माध्यम से जीव भगवान को जान सकते हैं, यह है संवित शक्ति। और आनंद क्या है? ये लादिनी शक्ति का कार्य है। लादिनी शक्ति वो है जिसके द्वारा श्री कृष्ण को दिव्य आनंद प्राप्त होता है, और जिसको प्राप्त करने से जीवों को भी दिव्य आनंद मिल जाता है। तो भक्ति के आदान प्रदान में जो प्रेम होता है वो प्रेम ये लादिनी शक्ति का स्वरूप है, और इसलिए श्रीमती राधा रानी साक्षात ये लादिनी शक्ति मूर्ति हैं, अंतरंगा बहिरंगा। बहिरंगा और तटस्था संबित मतलब वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ है ना, सही? तो संबित शक्ति के द्वारा वो सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सारी शक्तियां भगवान की सेवा में तत्पर रहती है, भगवान की इच्छा मात्र से उनकी सहायता के लिए आती है। और अंतरंगा के नीचे तीन भाग कौन से है? पहला है बताइए, संधिनी, संधिनी और संवित वो है जिससे भगवान अपने आप को जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और जिसके द्वारा जीव भी भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, संवित, संवित कॉग्निटिव, कॉग्निटिव पोटेंसी, पोटेंसी ऑफ कॉग्निशन ऑफ नॉलेज, भगवान को जान सकता है। जब तक कि भगवान जीव के भीतर संवित शक्ति की स्फूर्ति नहीं कराते हैं, तब तक जीव भगवान को भी नहीं जान सकता है। फिर संवित ने ऐसे नहीं, तीन तीन भाग अंतरंगा के तीन भाग हैं। ठीक है, जैसे ऊपर से किया वैसे तीन, जैसे जैसे कृष्ण की शक्तियों के तीन है ना, वैसे अंतरंगा के तीन। संवित और तीसरा है लादिनी, हल हल लादिनी, ह ह ह से आधा ह और ल आधा ल ल ठीक है, ला 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 दिनी, ला दिनी शक्ति, संधिनी जो भगवान के शाश्वत अस्तित्व को बनाए रखता है। संधिनी इटर्निटी, सच्चित और आनंद, इन तीन से संबंधित है ये संधिनी संवित लादिनी। ये लादिनी शब्द ये और कहीं भी आप सुनते हैं बताइए? रोज सुबह आप सुनते हैं प्रहलाद आह्लाद दायिने, है ना? प्रहलाद का नाम ही क्या है बताइए? दो भाग कीजिए प्रहलाद के नाम का। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। बस प्र प्र प नहीं केवल प्र, तो प्र क्या है? प्रकृष्ट रूपे प्रथम। तो आह्लाद आनंद, दिव्य आनंद, तो प्रहलाद प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, तो प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, आह्लाद मतलब आनंद, कौन देते हैं प्रहलाद को आह्लाद? नरसिंह देव। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो नरसिंह देव जो इष्ट देव हैं प्रहलाद के, वो प्रहलाद को आह्लाद दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। हालांकि प्रहलाद को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं करते। हिरण्यकश्यप को क्या करते हैं? हिरण्यकश्यप वक्षः शिलतंख नखालये, उनके दिव्य नखों से हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को फाड़ डालते हैं, लेकिन प्रहलाद के लिए आह्लाद देते हैं। तो ये शब्द
प्रहलाद
महाराज ने शरीर कैसे छोड़ा, ये अब दूसरा विषय हो गया, कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्लिस, पोटेंसी ऑफ ब्लिस, कॉग्निटिव पोटेंसी, नॉलेज, पोटेंसी ऑफ नॉलेज, और इटर्निटी, इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। ठीक है, तो ये लादिनी शक्ति की मूर्तिमान रूप परसोनिफिकेशन क्या है, राधा रानी। आप में से जो इसके बारे में ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं ये ग्रंथ पढ़िए, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारा ज्ञान मिल जाएगा। विशेष करके कैसे श्रीमती राधा रानी इसके रूप हैं, हाँ, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो राधा रानी स्वयं लादिनी शक्ति है, और भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति जो है ये केवल लादिनी शक्ति का ही रूप है। तो प्रेम और आनंद में कोई अर्थ नहीं, अंतर नहीं है। सच्चा प्रेम तो भक्ति है, इस दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं मिलता है हमें। सच्चा प्रेम तो वो है जो भगवान की ओर केंद्रित किए जाने वाला स्नेह है। संसार के व्यक्तियों से के प्रति हम जो स्नेह रखते हैं उसको प्रेम नहीं कहते, काम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जो किया जाता है वो प्रेम होता है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, और जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है वो है काम। तो जो भी कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नहीं है वो काम हो जाता है। तो ये है सच्चा प्रेम। लेकिन सच्चा प्रेम ये तो आनंद लादिनी शक्ति है, तो सच्चे प्रेम में और लादिनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति का आनंद इतना ज्यादा है। और ये जो सच्चा प्रेम है उसका विकृत रूप, इसका विकृत प्रतिबिंब, परवर्टेड रिफ्लेक्शन यहां पे भौतिक संसार में पाया जाता है, इस जिसको यहां प्रेम कहते हैं, जो सच्चा प्रेम नहीं है, काम है। तो यहां के दुनिया का तथा कथित प्रेम, सो कॉल्ड लव, वो क्या है, सच्चे प्रेम का विकृत रूप है। और इस विकृत रूप से भी लोग तथा कथित आनंद से पागल हो जाते हैं, होते हैं ना। आजकल कवियों ने क्या किया है, लिखा है, सिनेमाओं में क्या दिखा दिया, यही तो है ना, और क्या है। तो विकृत रूप से भी अगर आदमी को इतना तथा कथित आनंद मिलता है तो कल्पना कीजिए कि सच्चे प्रेम से कितना आनंद मिलता होगा। हमारे कल्पना के बाहर है, हमारे सोच के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि ये साक्षात भगवान की लादिनी शक्ति है और यह है श्रीमती राधा रानी। तो अगर भक्ति प्राप्त करना है तो श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगे तब भक्ति का एक बूंद हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से आकर्षित होते हैं, बहिरंगा शक्ति से नहीं। इसलिए बहिरंगा या भौतिक जगत के कोई भी गुण भगवान को आकर्षित नहीं करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, दुनिया से सबसे बड़ा अमीर आदमी है, और उसके सामने आप गए और आपके पास समझ लीजिए कि 100 रुपए रहे, मतलब तो देखो मेरे पास 100 रुपए हैं, तो क्या प्रभावित होगा? उसके लिए 100 रुपए क्या है? जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं उसको आप 100 रुपए के नोट दिखाएंगे और सोचेंगे कि वो प्रभावित हो जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया की जितने भी चीजें हम भगवान को दिखाएंगे, भगवान के लिए क्या है ये सब, भगवान क्यों आकर्षित होंगे संसार की चीजों से? भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है। कोई श्लोक जानते हैं ये साबित करने के लिए कि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है? बोलिए, जोर से बोलिए, जितना आता है उतना बोलिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानम वैराग्य योश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। तो छह ऐश्वर्य भगवान के हैं, कौन से हैं बताइए? एक पहले से बताइए, शुरुआत से। एक ऐश्वर्य, सबसे ऐश्वर्यशाली है, धन सबसे ज्यादा है। दूसरा सबसे ज्यादा बलशाली है, सबसे ज्यादा सुंदर, वही आकर्षक हो गए, कीर्तिवान, वैराग्य, ज्ञान। तो ये छह ऐश्वर्यों से पूर्णतया युक्त हैं भगवान श्री कृष्ण। और क्योंकि ये छह गुण उनमें पूर्णतया हैं, इसलिए वो सर्व आकर्षक कहलाते हैं। तो ये दुनिया के कोई ऐश्वर्यों को दिखाने से भगवान आकर्षित होंगे? नहीं। कोई सोचेगा मैं मेरे शारीरिक सौंदर्य से भगवान को आकर्षित करूंगा या करूंगी, मेरे धन से भगवान को आकर्षित करूंगा, या मेरे यश से, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं समाज में तो भगवान को आकर्षित करूंगा? नहीं। हमारे प्रतिष्ठा के सामने भगवान की प्रतिष्ठा क्या है? जैसे एक जुगनू और सूरज, जुगनू की तुलना कभी सूरज से की जाती है क्या? जुगनू का महत्व कब होता है? रात में। जब सूरज नहीं होता तब जुगनू लगता है कि जुगनू बड़ा प्रभावशाली है, सुंदर लगता है, लेकिन सूरज के सामने जुगनू को कोई देख भी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के ऐश्वर्यों को जानते नहीं, समझते नहीं, तब तक इस दुनिया के लोगों के ऐश्वर्यों को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। अरे बाबा, इतना धनी आदमी है, इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना बुद्धिमान है, इतना वैरागी है। परंतु भगवान को देखेंगे तो मानो सूरज सामने आ गए और ये दुनिया के छोटे छोटे जुगनू सब निकल गए। रहते हुए भी सूरज के सामने या भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तो बहिरंगा शक्ति की कोई भी वस्तु भगवान को बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान निरासक्त है, परंतु अंतरंगा शक्ति और विशेष करके लादिनी शक्ति की स्वरूप श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से आकृष्ट होते हैं। यहां तक कि पूरी तरह से वो इनके वश में आ जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर वशी करोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। तो भक्ति के गुण ऐसे होते हैं, कृत्वा हरिम प्रेम भाजन, कि वो भक्तों के प्रेम से बहुत आसक्त हो जाते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ, मादक द्रव्यों का सेवन करके नशे में आ जाता है और उसको छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और साथ साथ भक्ति ही वशी करोति इति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। वशी करोति मतलब भक्त अपने भक्ति के द्वारा भगवान को क्या करते हैं? वश में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण में लाते हैं। इसलिए भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी मता ऐसे कहा गया है, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। तो वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण यहां के संसार के अनगिनत कामदेवों को आकर्षित कर सकते हैं, उनका मन मोहित कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। मदन कौन है? कामदेव या कंदर्प, कंदर्प कोटि, है ना, कोटि कोटि कंदर्पों को वो आकर्षित कर सकते हैं, मदन मोहन। परंतु श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। इसका मतलब है कि ऐसी ऐसी प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से आकर्षित करके वश में कर लेती है। इसलिए कल शुभदा के अंत में हम क्या पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्ति की आसानी से क्यों नहीं देते, दूसरा पॉइंट क्या था, क्योंकि वो अपने भक्तों के हाथ में वशीभूत हो जाते हैं। मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम, नारद मुनि कहते हैं मुक्तिम ददाति, मुक्ति देते हैं, स्मन भक्ति योगम, लेकिन भक्ति नहीं देते दूसरों को, भक्तों को आसानी से नहीं देते। तो भक्ति ये श्रीमती राधा रानी के आश्रय में होता है। और अभी प्रभुपद इसी बात को कह रहे हैं, तो कोई कृपया जल्दी से पढ़िएगा।
भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना,
हाँ,
और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, ये तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतः कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती है।
हाँ, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति इस दुनिया का कार्य नहीं है, अर्थात बहिरंगा शक्ति के क्षेत्र में नहीं है यह भक्ति। तो भक्ति साक्षात अंतरंगा शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है। और जिस श्लोक का उल्लेख यहां प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जो जो केवल अनुवाद किया है, वो कौन सा श्लोक है, पहले भी बोल चुके हैं, बताइए कौन सा श्लोक है। हाँ, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, फिर भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा मोदादिम अव्ययम्। तो महात्मानस्तु माम पार्थ, देवी जो देवी प्रकृति है, प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमती राधा रानी है। तो जो श्रीमती जो महात्मा होते हैं वो राधा रानी के आश्रय में रहकर वो भक्ति करते हैं। और इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत के एकादश या ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय में है, उद्धव गीता में। तो श्री कृष्ण उद्धव से इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो पढ़िए क्या कहते हैं उद्धव जी कृष्ण।
कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में ये कहकर के, हे उद्धव, तुम इसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग ज्ञान कर्म कांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, ये कार्य उत्तम उत्तम कार्य तो है ही, किन्तु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेम भक्ति के समान मुझे आकर्षित नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकर्षित करते हैं उसका वर्णन नारद
नहीं, बस ठीक। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जान लो जो भक्ति विशेष करके ऊर्जित, ऊर्जित मतलब जो बहुत तीव्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो इस प्रकार से मुझे वश में करती है जो कि अन्य पथ बिल्कुल नहीं कर सकते। अन्य पथ अर्थात क्या है, न साधिति, ऐसे ऐसे मुझे वश में करने की शक्ति अन्यों से साध्य नहीं है। योगो मतलब योग पथ, अष्टांग योग का मार्ग, सांख्य योग का मार्ग, धर्म धर्म अर्थात कर्म कांड का मार्ग, स्वाध्याय मतलब वेदों का अध्ययन करने का मार्ग, तपस्या का मार्ग, त्याग या वैराग्य का मार्ग, ये सब चीजें अपनी जगह में ठीक है, परंतु इनसे भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से प्रसन्न और आकृष्ट नहीं होते, वशीभूत नहीं होते हैं। केवल भक्ति ममोर्जिता, भक्ति मम ऊर्जिता, वैसे ऊर्जिता भी श्रीमती राधा रानी का एक नाम है। कार्तिक व्रत में भी ऐसे कहते हैं, इसी भक्ति रसामृत सिंधु में भी इनका उल्लेख है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी इसी बात की पुष्टि के लिए, तो कोई पढ़िएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कह रहे हैं, जबकि नारद जी का भाव क्या था, अब युधिष्ठिर महाराज का भाव क्या था इस समय, क्या बतला रहे हैं प्रभुपाद जी? और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज जैसे कोई महान भक्त नहीं है, प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान विशेष करके उनके लिए प्रकट हुए। देखिए प्रहलाद का सौभाग्य क्या है, अगर कोई व्यक्ति विशेष हमारे लिए आता है, कोई बड़ा व्यक्ति, तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए ना, समझिए कि हमारे लिए हमारे जीवन में कोई कष्ट है और राष्ट्रपति हमारे घर में आते हैं हमारे समस्या का समाधान करने के लिए, स्वयं आ गए हेलीकॉप्टर लेकर, हेलीकॉप्टर से हमारे घर के छत में ऊपर लैंड किए और सीधे, क्या समस्या है आपकी? अच्छा ठीक है, ये समस्या है, चलो यहाँ तो दो चार फोन लगा लिए भाई, इनकी समस्या को ठीक कर लो, और हेलीकॉप्टर लेके चले गए। तो सारे लोग क्या सोचेंगे पड़ोस में, अरे देखो इनके लिए राष्ट्रपति आए, सीधे दिल्ली से यहाँ आए और यहाँ इनके घर में विशेष करके खास इनके लिए ही आए और वापस चले गए। और ये तो है एक राष्ट्रपति जो एक छोटे से राष्ट्र के तथा कथित पति है, परंतु भगवान कौन है? जगत पति है, अनेक जगतों के पति हैं, आध्यात्मिक जगत के भी पति हैं। तो वो भगवान केवल एक बच्चे को, लड़के को बचाने के लिए आए, का नाम था प्रहलाद। और वो कहां से आए? बहुत दूर से आए, दिल्ली से वृंदावन नहीं, बहुत दूर से आए, वैकुंठ जगत से आए यहां पर इस भौतिक जगत में। और उनका हेलीकॉप्टर क्या था? वो तो गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं ना, प्रकट हो गए, खंबे के अंदर आके प्रकट हो गए। तो प्रहलाद का कितना सौभाग्य है। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी एक महत्वपूर्ण बात यहां बता रहे हैं कि भक्त की भावना ऐसी ही होनी चाहिए कि भक्त अपने आप को कभी महान नहीं समझता है, भक्त हमेशा सोचता है कि दूसरे भक्त मेरे से अच्छे हैं, दूसरे भक्त महान हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसे कोई अच्छे गुण नहीं है। जो भक्त सोचता है कि मैं अच्छा भक्त हूं, वो अच्छा भक्त नहीं है। तो आगे नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वास्तव में सारे दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोग आप हो। ठीक है प्रहलाद महाराज की प्रशंसा आप कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको स्वयं आपके सौभाग्य के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं, आप जान लीजिए कि आपका सौभाग्य क्या है। क्या है आपका सौभाग्य? क्या था पांडवों का सौभाग्य? क्या कह रहे हैं यहां पर? भगवान सदैव उनके साथ में रहा करते थे। कैसे?
आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं।
गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कि भगवान एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की तरह आपके बीच में रह रहे हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके ममेरे भाई के समान रह रहे हैं। वैसे भगवान किसी के ममेरे भाई हैं क्या? भगवान किसी के बेटे हैं? भगवान किसी के क्या है? भगवान भगवान तो अपने जगह में है, वो किसके पुत्र हो सकते हैं? कौन उनका माता पिता, उनका चाचा चाची, कौन क्या हो सकता है उनके लिए? ये तो भगवान की लीलाएं हैं। केवल अपने प्रिय भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए ऐसे संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे लीला करते हैं। जब दुनिया में प्रकट होते हैं तो ऐसे तथाकथित संसारी संबंध को बनाए लेते हैं, जैसे कि संसार में होता है, यूयम निलोके बत भूरि भागा। कि भूरि भागा मतलब आपका जो भाग्य है ये तो बहुत ही विशेष है, बहुत ज्यादा। लोकम पुनाना मुनयो भियंती ईशाम गृहन अवसती साक्षात। आपके बीच में साधारण व्यक्ति के समान भगवान रहे, देखो आपका सौभाग्य कितना है। राष्ट्रपति आपके घर में आए हेलीकॉप्टर से, आपकी समस्या का समाधान किया और तुरंत चले गए, ये एक बात हुई। लेकिन राष्ट्रपति आए और आपके घर में रहे, आपके बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, आपके साथ घूमने फिरने लगे, साथ में बैठ के आप गपशप करने लगे, कई दिन आपके साथ में रहे, इधर उधर घूमे आपके साथ, तो ये श्रेष्ठ है या पहला वाला श्रेष्ठ है? दूसरा वाला। क्यों?
गाड़ी का ड्राइवर
बना, चलो आप कहाँ जाना है, गार्डन में जाना, चलो आपको घुमाने ले जाते हैं, चलो गाड़ी लेके चले गए। तो कौन से उदाहरण में व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बताइए? दूसरे वाले में। पहले तो केवल आए और चले गए, लेकिन यहां पर उनके साथ में रहे, उनके दास बनकर रहे, उनकी सेवा की, और जो निकटता का अनुभव यहां हुआ वो पहले अवसर में नहीं हुआ। प्रहलाद तो शुद्ध भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, परंतु भगवान केवल थोड़े समय के लिए रहे, हिरण्यकश्यप और उनके सेना का वध किया, प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाया, आशीर्वाद दिया सबको, चले गए। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसे नहीं किया पांडवों के साथ, पांडवों के बीच में रहे, उठे बैठे, खाए पिए, हंसी मजाक किया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं ये तो सबको चकाचौंध करने वाली बात है, सारी दुनिया को, सारे मुनिवर जो हैं ये आश्चर्यचकित हैं कि परब्रह्म साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आज आपके घर में एक साधारण मनुष्य की तरह रह रहे हैं, मानो कि वो आपके ममेरे भाई हैं, आपके दोस्त हैं वगैरह। तो सोचिए, आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका सौभाग्य कितना है। उसी प्रकार से आगे प्रभुपाद जी भगवद गीता के 11वें अध्याय का वर्णन कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि और आगे करने के लिए। 11वें अध्याय में क्या वर्णन है भगवद गीता के?
जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसीलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान है कि मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की, यद्यपि कृष्ण भगवान है पर महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भगवानों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकर्षित होने के कारण उनके साथ रहे। ये इसका प्रमाण है कि ये भक्ति विधि कितनी महान है, ये भगवान तक को आकर्षित कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि ये उन्हें आकर्षित करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे ये कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है।
भगवान महान है परंतु भक्ति उनसे भी महान है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मायावादी लोग क्या होना चाहते हैं? भगवान होना चाहते हैं, परंतु भक्त लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो सोचते अरे हम भगवान क्यों हो जाएं, वो तो भगवान से महान होता रहे हो जाते हैं, भगवान से भी ज्यादा। हालांकि भक्त की गणना या भक्त की भावना बिल्कुल ऐसे नहीं रहती कि वो भगवान से बड़ा होना चाहते हैं, वो तो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। परंतु भक्तिर ममोर्जिता, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी तीव्र है इसलिए भगवान वशीभूत हो जाते हैं और वो भगवान से भी महान हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। तो हालांकि कृष्ण महान है लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा महान उनकी भक्ति है। इसलिए यहां जो गीता का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं ना, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वो कहते हैं कि सखा इति मत्वा प्रसभम यद उक्तः, कि सखा इति मत्वा इस भाव से इस विचार के से कि आप मेरे मित्र हो, प्रसभम बड़े घमंड में यद उक्तः मैंने आपको पुकारा, क्या पुकारा मैंने, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, इस तरह से मैंने आपको पुकारा। अब अर्जुन ने इस 11वें अध्याय में विश्वरूप देखा, विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन बिल्कुल चकाचौंध हो गए, अरे इतना बड़ा विशाल रूप और मैं तो इनको केवल मेरा मित्र समझ रहा था। तब वो बहुत घबरा गए, घबराकर बोलने लगे कृष्ण से, ये श्लोक बोलने लगे कि अरे मैंने तो आपको केवल मेरा मित्र समझा था और मित्र समझकर मैंने आपको ऐसे ऐसे नामों से पुकारा था, कैसे नामों से पुकारा था, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, ऐसे नामों से मैंने पुकारा था, अजानता महिमानम, और आपके महानता को महिमा को मैं नहीं जानता था। इस बात को यहां प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं, मया प्रमादात प्रणयेन वापी, कि कभी मैंने प्रमादा कभी पागलपन से ऐसे आपको बुलाया। अर्जुन अभी सोच रहे हैं पागलपन से, ले पागलपन तो था नहीं, लेकिन अर्जुन इस समय ऐसा सोच रहे हैं विश्वरूप देखने के बाद, प्रमादात प्रणयेन वा, प्रणय का मतलब क्या है, प्रेम, तो कभी मित्रता के प्रेम में मैंने आपको ऐसे नामों से पुकारा, कभी पागलपन से पुकारा, तो अब मैं देख रहा हूं आपका विश्वरूप और आप परम सत्य हैं ये हैं, और अब मैं लग रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसलिए आगे बोलते हैं कि कभी कभी हम एक ही आसन पर बैठते थे, कभी कभी भोजनेशु हम साथ में भोजन लेते थे, कभी कभी हम एक साथ लेटे हुए, कभी मैं आपके साथ हंसी मजाक करता था, उपहास करता था आपका, तो ये सारे चीजें मैंने की, कभी कभी अपमान भी किया आपको हंसी मजाक करते हुए, तो कृपया क्षमस्व, भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी अपराध किया आपके प्रति। तो ये ऐश्वर्य भाव आ गया विश्वरूप देखने के बाद, परंतु विश्वरूप देखने के पहले अर्जुन का जो शुद्ध सख्य भाव था वो बहुत मधुर था, हालांकि वृंदावन जैसा मधुर नहीं था, हस्तिनापुर का जो मधुर सख्य भाव है वो वृंदावन के सख्य भाव से और थोड़ा ज्यादा ऐश्वर्य युक्त है। वृंदावन में जो सखा भाव है यहां कोई घबराता नहीं कृष्ण से, है ना, वृंदावन में ग्वाल बाल क्या घबराते थे कृष्ण से, आज जब कृष्ण ने असुरों का वध किया क्या ग्वाल बाल घबरा गए, क्या बोलने लगे कृष्ण से, तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम यामेश्वरम, तुम कौन से बड़े लोग बड़े आदमी हो, मैं भी कोई कम नहीं, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, ये नहीं सोचना कि तुमने असुर का वध कर लिया इसलिए तुम बड़े आदमी हो गए, हम लोग भी थोड़े कम है क्या, हम भी कर सकते हैं। तो जब कृष्ण ने वृंदावन में ऐसी लीलाएं की हैं और अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया तो ग्वाल बाल मित्रों का प्रेम स्नेह बढ़ गया और ऐश्वर्य बीच में नहीं आया बल्कि उनका माधुर्य और बढ़ गया, और ऐसे माधुर्य से कृष्ण को बहुत आनंद आता है। अर्जुन का भी स्नेह सख्य भाव में है परंतु वृंदावन का माधुर्य इतना नहीं है क्योंकि वो भाव द्वारका का है, हस्तिनापुर का है, और यह हम देख रहे हैं इसका प्रमाण। जब अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया तो तुरंत अर्जुन के मन में ऐश्वर्य भाव आ गया, अरे मैंने क्या कह दिया, कृष्ण को कृष्ण कहा, यादव कहा, ऐसे नामों से पुकारा मैंने, ये तो ठीक नहीं था, मैंने बहुत बड़े अपराध किए। लेकिन वृंदावन के भक्त सखा ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने आप को अर्जुन के हवाले कर दिया था, कैसे एक साथ में शैया में लेटे रहते, कभी उपहास करते, कभी एक जगह बैठते, खाते पीते, तो सोचिए स्वयं परब्रह्म आके ऐसे निकटता से अनुभव लीला कर रहे हैं भक्तों के साथ। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां कहते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान कैसे अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। इसलिए भक्ति भगवान से अधिक महान मानी जाती है। तो श्री कृष्ण आकर्षणी, ये है भक्ति का आखिरी गुण। तो इसके साथ ये अध्याय समाप्त हो जाता है और अगला अध्याय दूसरा अध्याय है। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, और सबसे पहले यहां प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भक्ति की तीन कोटियां बतलाई हैं। वो चार्ट लगाएंगे जरा, आप यहां लगाएंगे इसको, थोड़ा सामने ले आएंगे इसको। उठा के कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आएगी। बस, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस बात को यहां दिखलाया हुआ है, उत्तमा भक्ति के तीन कोटियां हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। वास्तव में दो श्रेणियां हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन और साध्य क्या है? साधन शब्द का अर्थ क्या है? साधन और साध्य,
साधन जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की जाती है।
नहीं, साधारण भाषा में बताइए, अगर भक्ति
साध्य कर सकते हैं।
हाँ, साध्य क्या है? साध्य मतलब क्या है? हाँ, जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो है साध्य, है ना? और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, है ना? साधन और साध्य। तो साधन भक्ति वो है जिसको करके किसी साध्य की प्राप्ति होती है, साध्य भक्ति। तो ये साध्य भक्ति के दो विभाजन हैं, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हो गई? साधन और साध्य। साध्य है कृष्ण प्रेम। अच्छा, हम अब भक्ति के छह लक्षण देख चुके हैं, अभी ये साधन भाव और प्रेमा भक्ति का संबंध इन छह लक्षणों से क्या है, अब आइए देखते हैं कि क्लेशग्नि और शुभदा भक्ति के ये दो लक्षण साधन भक्ति करते समय प्रकट हो जाते हैं पूर्ण रूप में। जब भाव भक्ति करते हैं, भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो बाकी आने वाले दो, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये दो लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। और जब सबसे ऊंचे स्तर प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं, तो उस समय अंतिम दो लक्षण सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी ये प्रकट हो जाते हैं। तो ठीक है, अभी आप दो मिनट में लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधन भक्ति में पहले दो, भाव भक्ति में बाद वाले दो भी आते हैं, लेकिन पहले दो भी तो हैं ही, और प्रेम भक्ति में अंतिम दो लेकिन पहले चार भी तो हैं ही। तो छह ही गुण प्रेम भक्ति में पाए जाते हैं पूर्णतया। वैसे भक्ति की महानता इन छह गुणों के द्वारा, छह लक्षणों के द्वारा घोषित की जा सकती है कि ये छह गुण है भक्ति के, इसलिए भक्ति इतनी महान है। और हर प्रकार के भक्ति में दो गुण प्रकट हो जाते हैं अधिक, और श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि साधन भक्ति भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता, वशीभूत नहीं कर सकता है। कौन सी भक्ति है जो भगवान को वशीभूत कर सकती है? प्रेम भक्ति। क्योंकि वो भक्ति बहुत शुद्ध है, बहुत तीव्र है, इसीलिए साधन भक्ति से भगवान वश में नहीं होते। परंतु ये सारे गुण और अन्य गुण आ जाते हैं धीरे धीरे से। इस बारे में कोई प्रश्न आपके?
शुरू में जब नए भक्त लोग जब भक्ति में आते हैं तो उस समय जो भाव प्रकट होते तो वो क्या प्रेमा भक्ति के लक्षण होते हैं? इस समय उसको बिल्कुल अच्छे भाव होते हैं।
एक दृश्य से देखा जाए तो जो बिल्कुल नौसुखीय भक्त होता है वो शुद्ध भक्त की तरह होता है। क्योंकि उसका हृदय भी शुद्ध रहता है। अभी अभी भक्ति के सागर में उसने तैरना शुरू किया है और जब भी अमृत का पान करता है तो ऐसे लगता है कि बस हम तो कहीं बादल में पहुंच गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबिनी में इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। उत्साहमयी, इतना उत्साहित होता है कि जो भी कहे वो करने के लिए तैयार। अरे ये करो, भागेगा, सर टकराएगा, कोई परवाह नहीं, कहीं जाएगा, कुछ ठोकर खाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो सेवा कर देगा। बहुत उत्साह होता है उसमें और एक शुद्धता होती है एक प्रकार की। हृदय भी बहुत निर्मल होता है उस दृष्टि से, क्योंकि इतना उत्साह आ जाता है, भक्ति का स्वाद मिल जाता है। लेकिन वास्तव में उस स्तर पर है नहीं वो भक्त। केवल भगवान श्री कृष्ण ने उसको आकर्षित करने के लिए एक बूंद का भी, एक छोटा सा बूंद अणु मात्र आस्वादन कराया है। फिर धीरे धीरे से क्या होता है, फिर धीरे धीरे से अपने साधन वगैरह में, भजन में थोड़ा सा लापरवाही करने लगता है, फिर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है अपने भक्ति के नियमों में, फिर इधर उधर जाके मन भटक जाता है। पहले पहले जब वो आता है तो सारे भक्तों को शुद्ध भक्त मानता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अरे ये भक्त ऐसे ऐसे गुण है, वो भक्त वैसे गुण है, अरे वो तो वैसा है, मैंने सोचा था कि वो अच्छा भक्त है, लेकिन अब मैं जान गया कि ये तो ऐसे है, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। तो फिर ऐसे जब भावना धीरे 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 से आने लगती है, फिर वो आनंद जो है धीरे धीरे से हृदय से चले जाता है। और फिर वही हमारी पुरानी आदतें फिर आ जाती हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि अपनी अपना साधन भजन, अपने भक्तों के साथ संबंध जो है बहुत अच्छी तरह से बनाए रखे। तो खैर ये एक लंबा विषय है। नारद मुनि के साथ भी ऐसे हुआ ना, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आती है ना ये कथा। जब वो बैठे ध्यान करने के लिए, अचानक भगवान का दर्शन हुआ और जो आनंद उनको उस समय प्राप्त हुआ उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और अचानक भगवान ओझल हो गए और जब अदृश्य हो गए तो नारद मुनि सोचने, अरे ये क्या हो गया। जैसे एक गरीब आदमी को बहुत अचानक पैसे मिल जाते हैं और फिर से अचानक वो पैसे को छीन लेता है, या भूखे आदमी को कोई अचानक अच्छा प्रसाद सामने रखता है फिर से वो थाली खींच लेता है सामने से, उसको कैसे लगता है। तो नारद जी, उस समय नारद नहीं थे, वो अपने पूर्वजन की बात है, दासी पुत्र थे, वो बहुत प्रयत्न किया उन्होंने ध्यान में बैठकर, ठीक जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ करके, ऐसे बैठूं तो ऐसे बैठूं तो ध्यान में फिर से भगवान सदृश हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि हे पुत्र, अभी इस जन्म में तुम्हारे सामने मैं प्रकट नहीं होऊंगा, मैं इस बार एक बार प्रकट हुआ तुम्हारे सामने केवल तुम्हें स्वाद देने के लिए, अब ऐसे तुम मेरे लिए तरसते रहोगे, ऐसे तरसने से तुम्हारे हृदय के अंदर जो भी कलमश रहा है, बाकी रहा, जितने भी कण मात्र है, वो भी स्वच्छ हो जाएगा और फिर तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करोगे। तो हमें प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो स्वाद देते हैं भगवान शुरुआत में। हर एक भक्त को याद रहता है कि जो भक्ति के आने के समय जो उसकी भावना थी वो क्या थी, और वो सोचता है काश वो दिन आते अभी जब इतना अच्छा लगता था भक्ति में, अभी जप करते समय नींद आती है, अभी कितने सारी समस्याएं होती है, लेकिन उस समय मंगल आरती तो क्या, सुबह सुबह एक घंटे पहले तैयार वगैरह सब कुछ हो जाते थे, रात को नींद भी नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो भक्त चाहते हैं कि वो दिन याद करें कब हम ऐसे पुनः आस्वादन कर पाएंगे। तो हमें प्रेरित करते हैं भगवान और आगे बढ़ने के लिए, उस आनंद का अनुभव करने के लिए। तो खैर, हमारा साध्य है प्रेमा भक्ति। भाव भक्ति वास्तव में साधन नहीं है, क्योंकि साधन का उद्देश्य है, इसलिए वो साधन भक्ति में नहीं आता। बल्कि ये साध्य है, लेकिन प्रेमा भक्ति भी अलग है। भाव से प्रेम में परिवर्तित होना है, इसलिए ये अलग ही श्रेणी बनाई गई है। ऐसे रूप गोस्वामी ने विभाजन किया है भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार। ठीक है, ये बातें स्पष्ट हो गई, तो आगे पढ़ते हैं। ये तो इस दूसरे अध्याय के पहले भाग में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के इन तीन वर्गों का, तीन प्रकार के भक्तियों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, और ये बताया कि छह जो लक्षण हैं वो कैसे विभाजित हो जाते हैं, वितरित हो जाती हैं ये छह लक्षणों में, दो गुण दो लक्षण हर एक प्रकार के भक्ति के लिए। और दूसरी बात, फिर प्रभुपाद यहां चर्चा करते हैं, भक्ति या उत्तम भक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, और प्रभुपाद जी यहां वो कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाद या रस के अनुसार व्यक्ति का अधिकार होता है भक्ति प्राप्त करने के लिए। और विशेष करके वो कहते हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति इस जन्म में नहीं कर सकता जब तक कि उसका भक्ति से कोई संबंध पूर्व जन्म में न हुआ हो। ठीक है, बताइएगा, अपने शब्दों में बताइए। अगर हम लोग सब अब यहां बैठ के भक्ति कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि हम सब ने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की है, अन्यथा यह नहीं होते, अन्यथा हम भक्ति नहीं कर पाते। तो प्रश्न ये है कि भगवान को के पास पहुंचने के लिए दो जन्म की भक्ति चाहिए, यह प्रश्न है। अभी आप उत्तर दीजिए, कोई उत्तर देंगे? उत्तर दीजिए कोई। एक ही जीवन काफी है। अच्छा, और कोई उत्तर?
गंभीरता के प्रांत
में। गंभीरता, अच्छा। और हम चर्चा कर चुके हैं, हाँ, ये सही बात है। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन अब यहां जब हम पहुंचे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अनेकों अनेक जन्म बीत चुके हैं, अब इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है जीव का। जीव अनेक योनियों में से गुजर चुका है, अनेक जन्म ले चुका है, बहुत अज्ञात सुकृति एकत्र करते करते, फिर ज्ञात सुकृति, फिर भक्ति करते करते, फिर यहां तक पहुंच गया है जीव। अब जब यहां तक पहुंचे हैं और हम रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस जन्म में ही हमें सब कुछ समाप्त करना है, भक्ति समाप्त नहीं करना है, मतलब भक्ति की परिपूर्णता को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, ये हमारा साध्य है इसी जन्म में। ठीक है, केवल दो जन्म काफी नहीं है साधारण तौर से, इतिहास बहुत लंबा होता है।
इससे पूरा आपने एक पहली लाइन क्या बोली
थी जो ये इस क्वेश्चन से पहले जो चर्चा रस प्रभुपाद जी कहते हैं, आप पढ़िए फर्स्ट लाइन पढ़िए सेकंड पैराग्राफ।
इस पर समय श्री रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावना के पात्र उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है,
उसके विशेष रुचि के अनुसार, तो जिस प्रकार के रुचि है आदमी के अंदर उस प्रकार से उसका अधिकार बनता है, और इस बात की पुष्टि आगे चल के होगी। और विशेष करके वो कहते हैं कि भक्ति अनेक जन्मों के कार्य से, प्रयास के बाद सफलता की ओर हमें ले जाता है। और आगे यहां प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कौन उदाहरण को पढ़ेंगे इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हालांकि इस जन्म में 100% प्रगति हम नहीं कर पाए, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी क्या होगा।
ये कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है, जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक मैं भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरण मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि ये 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है, यद्यपि सातत्य ना भी रहे, और यदि कोई व्यक्ति संयोग में शुद्ध भक्ति के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत जैसे ग्रंथों को समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं।
तो फिर से हम तीसरे दिन में उसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं भगवद गीता का, इससे सिद्ध होता है कि भगवद गीता एक भक्ति एक जन्म की बात नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। पिछले जन्म में अगर हमने 50% किया है तो 50% से ही हम अगले जन्म में चालू करेंगे भक्ति, फिर 70 तक पहुंचे फिर 70 से चालू करेंगे, और 100% पहुंचने तक हमें जन्म लेते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से विद्यार्थी जब क्लास में होता है तो पास करने के लिए कोई कम से कम अंक तो मिलने पड़ते हैं ना, 100 में से 40 या 30 या जो भी हो, तो जब तक उसे 40 मार्क नहीं मिलेंगे तब तक उसे उसी कक्षा में रहना होगा, बार बार वो परीक्षा देनी होगी। तो उसी प्रकार से जब तक हमें 100% नहीं मिलेगा तब तक हम पास नहीं हो सकते भौतिक जगत से, रिपीट करना पड़ता है फिर से उसी कक्षा में, या निम्न श्रेणी की कक्षा में भी जाएंगे हम, लेकिन भक्ति करते हैं इसलिए निम्न श्रेणी की योनि नहीं मिलेगी, कम से कम मनुष्य योनि मिल जाएगी। तो ये सौभाग्य है भक्त का कि उसे अगले जन्म में भक्ति करने की वर्ण करने का अवसर मिल जाता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बीच में अगर कोई छूट भी जाए फिर भी एक शुद्ध भक्त के आदेश का पालन करने से पुनः वो जागृत हो सकता है। तो शुद्ध भक्तों का संग ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे फिर ये रुचि की बात जो प्रभुपाद जी ने पहले की थी उसको पुनः यहां पर दोहरा रहे हैं और कहते हैं कि जो भी हो, जो लोग भगवद गीता श्रीमद भागवत ऐसे ग्रंथ के प्रति रुचि रखते हैं उनके लिए भक्ति आसान है, उनकी अपेक्षा है जो कि केवल दार्शनिक चिंतन और तर्क में मग्न रहते हैं। तो ये रुचि की बात है, तो ऐसे रुचि कैसे उत्पन्न होती है? पूर्व जन्मों के सुकृति से। पूर्व जन्मों में जिन्होंने भक्ति की है वो भक्ति का फल इस जन्म में रुचि के रूप में प्रकट होता है। पूर्व अभ्यास से न तेनैव ह्रियते ह्यपशोऽपि सः। पूर्व अभ्यास की वजह से वो आकर्षण या रुचि पैदा होता हो जाती है व्यक्ति के अंदर, जिसकी वजह से वो गीता भागवत के प्रवचनों में जाता है, भक्तों के प्रति के संग के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो यह रुचि, हर एक व्यक्ति रुचि नहीं रखता। कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चे भी रुचि दिखाते हैं स्वाभाविक रूप से, और कभी कभी जो बूढ़े लोग होते हैं मृत्यु के शैया में लेटे हुए होते हैं, जितना भी कहो वो रुचि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सुकृति है नहीं उनके पास। एक बार एक डॉक्टर बता रहे थे, जो भक्त हैं, एक बूढ़ी महिला थी, तो वो मृत्यु का समय था। अंतिम क्षणों में वो डॉक्टर ने उनसे कहा हरे कृष्ण बोलो, तो कुछ उन्होंने चेहरे पे कुछ दिखाया नहीं, जैसे वैसे देख रहे थे। हरे कृष्ण बोलो तो सुनाई कम दे रहा था, तो और जोर से बोला हरे कृष्ण बोलो, क्योंकि उन डॉक्टर को पता था थोड़े मिनट हैं बस, अभी जले जाने वाली हैं ये। तो वो महिला ने जितनी भी थोड़ी ताकत थी शरीर में उससे यूं किया, नहीं, जितनी ताकत उसमें लगाई केवल बोलने में लगाती तो हरे कृष्ण बोल देती, उसे बहुत कम ताकत लग जाता था, लेकिन जिद था नहीं बोलेंगे हरे कृष्ण। डॉक्टर बार बार बोल रहा था, थोड़ा गुस्सा आ गया होगा उनको, क्या हरे कृष्ण बोल रहा है ये। तो ताकत जितनी थी वो लगा के नहीं करना है तो रुचि नहीं है, आखिरी क्षण पे भी रुचि नहीं है, क्योंकि सुकृति नहीं है पूर्व जन्मों से। कभी कभी छोटे बच्चे भी हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन में भाग लेने को बहुत अच्छा लगता है। तो ये रुचि क्यों आती है? क्योंकि पूर्व जन्म की सुकृति है, पूर्व जन्म में भक्ति की हुई है। यही बात प्रभुपाद जी यहां पर समझा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि, हाँ जी, हाँ प्रश्न पूछिए। प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में कोई अज्ञात सुकृति प्राप्त नहीं की हो और इस जन्म में अगर कोई शुद्ध भक्त का संग उसे प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है इस जन्म में? एक दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध भक्त कृपा से कुछ भी हो सकता है, परंतु साधारण तौर से ऐसे नहीं होता है। ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए ना। क्यों ऐसे है कि थोड़े लोग मिले शुद्ध भक्त से और अन्य लोग नहीं मिले? और ऐसे कई थे जो मिले लेकिन मिलने का पूरा फायदा उठाया नहीं, और थोड़े थे जिन्होंने पूरा फायदा उठाया। तो जो उनको संग प्राप्त हुआ ऐसे शुद्ध भक्त का, और जिन्होंने फायदा नहीं उठाया, अवश्य उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ, ये उनकी सुकृति और बढ़ गई। और आने वाले जन्मों में कभी हो सकता है कि वो भक्ति में दृढ़तापूर्वक भक्ति कर पाएंगे। और जो लोग थे जिनकी भक्ति की या सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई थी, वो लोग शुद्ध भक्ति के संग का पूरा फायदा उठा पाए। तो ये भी है कि शुद्ध भक्त अगर चाहे तो सुकृति बना देते हैं, शुद्ध भक्त की कृपा बहुत महान होती है। एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, वैसे हम लोग तो बड़े पापी थे, हम लोग इतने सारे पाप कर रहे थे, फिर भी आप जैसे शुद्ध भक्त का संग और आपकी कृपा हमें मिली, ये कैसे हुआ? हमने तो कोई पुण्य कार्य नहीं किए थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ आप लोगों के पुण्य कार्यों को मैंने बनाया है। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त की कृपा से कुछ भी हो सकता है, परंतु साधारण तौर से देखा जाए तो शुद्ध भक्त का संग मिलने के बाद भी उसका पूरा लाभ उठाने के लिए रुचि चाहिए। और इसका प्रमाण यह है कि प्रभुपाद जी से कई लोग मिले लेकिन सभी लोग भक्ति के पथ में नहीं आए। अवश्य मिलेगा, अवश्य। हरि नाम कभी भी नुकसान नहीं कर सकता, फायदा ही फायदा होगा। परंतु कितना फायदा वो व्यक्ति ले सकता है वो उसके रुचि और सुकृति के ऊपर निर्भर है। सुनने से वो फायदा तो हुआ लेकिन ऐसा नहीं कि उसे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अगर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, भगवान के धाम में जाना है, तो हमें प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त करना होगा, तब तक हम नहीं जा सकते। और वो महिला तो अभी तक साधन भक्ति के स्तर में भी नहीं आई थी, इसलिए उनके भगवान के धाम में लौट जाना तो स्वाभाविक संभव नहीं है। भक्ति अज्ञात सुकृति हो गई, क्योंकि वो महिला को पता नहीं है क्या है, लेकिन सुन तो लिया उन्होंने भक्त के मुख से, इसलिए अगले जन्म में कहीं न कहीं तो ये लाभदायक हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल, जब विष्णु दूत आए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और वो बचे यमदूतों के चंगुल से, तो ऐसा नहीं कि अजामिल तुरंत भगवान के धाम में चले गए, केवल उनकी नरक से मुक्ति हो गई, मृत्यु से मुक्ति हो गई, पापों से मुक्ति हो गई, परंतु भगवत धाम की प्राप्ति तुरंत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने शुद्ध नाम नहीं लिया था, नामाभास लिया था, नाम के अपराध के बिना उन्होंने नाम लिया था। लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए शुद्ध नाम लेना चाहिए, प्रेमा भक्ति के स्तर में आना चाहिए। फिर वो हरिद्वार गए, 12 साल उन्होंने बहुत तपस्या की, भगवान की सेवा की, फिर भगवान के धाम में जा पाए। ठीक है,
कुछ लोगों की नहीं भी बनी रुचि, पूर्व जन्म की स्वीकृति इसका मतलब साथ में थी जिन लोगों ने रुचि ली।
हाँ बिल्कुल, अन्यथा ये संभव नहीं था, वो दूसरी तरह के दूसरे लोगों की तरह हो जाते जिनको प्रभुपाद का संग मिलते हुए भी वो तीव्रता से भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाए।
तो जिनकी पूर्व जन्म की स्वीकृति थी तो उन्होंने प्रभुपाद जी में के साथ
उनके पद को स्वीकार किया, उनके कृपा को स्वीकार किया। कृपा तो बहुतों को मिली लेकिन कम लोगों ने स्वीकार की, और जिन्होंने स्वीकार की उन्होंने भी अलग अलग मात्राओं में स्वीकार की। जिन्होंने सबसे अधिक मात्रा में स्वीकार की, जिन्होंने बहुत तीव्रता से दृढ़ता से भक्ति की, उनकी प्रगति हुई।
तो इसका क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी का कि मैंने तो बड़ी स्वीकृति पाई, इसका क्या तात्पर्य होता है?
तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध भक्त की कृपा से सब कुछ हो सकता है, शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा।
स्वीकृति मैंने तुम्हारी स्वीकृति बनाई, इसके पीछे
कहने का मतलब है कि सुकृति नहीं भी हो किसी की, लेकिन अगर शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाती है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। हाँ जी, कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। लेकिन ये कॉजलेस मर्सी या जो अहेतु की कृपा की परिभाषा ये है, साधारणतः इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई भी सुकृति नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी उनकी सुकृति है और उस हिसाब से जितना उनको मिलना चाहिए था साधारण तौर से, उससे कहीं अधिक गुना उनको मिला, प्रोपोर्शनली, बियॉन्ड प्रोपोर्शन, मतलब जो मिलना था उससे कहीं अधिक मिल गया। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसे उसने जो परीक्षा में लिखा है उससे उसको मिलना चाहिए था 10 नंबर 100 में से, लेकिन बड़े उदार हृदय के थे अध्यापक, उन्होंने 40 नंबर दे दिए। लेकिन कुछ तो था ना, दस तो लिखा ना, कुछ तो था। अगर उसने खाली छोड़ा होता पेपर तो शायद अध्यापक ने ऐसे कृपा नहीं की होती। तो यह भी एक दृष्टि से अहेतु की कृपा है, क्योंकि 10 से 40 करना काफी बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन 10 तो था कम से कम, इसलिए तो दिया। वही बात है, प्रभुपाद जी एक चुटकुला सुनाया करते थे, उन्होंने सुनाया एक बार कि एक विद्यार्थी था, इतिहास का इम्तिहान लिख रहा था और अचानक एक राजा के बारे में प्रश्न आया कि राजा फलाना फलाना, इसके बारे, इसके राज्य के बारे में जरा लिखो। तो बेचारे विद्यार्थी ने राजा का नाम भी नहीं सुना था, अब क्या लिखेगा राजा के बारे में, और सारे अन्य प्रश्न तो समाप्त हो गए थे। तो सोचा अभी समय तो है, कुछ तो लिखेंगे, चलो लिखते हैं। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, बिल्कुल शुद्ध बकवास लिखा, शुद्ध बकवास, एक भी शब्द सही नहीं था, एक भी शब्द नहीं, शब्द का भी कोई अर्थ भी नहीं था, ऐसे ऐसे शब्द अक्षरों को ऐसे ऐसे वैसे जोड़ लिया, मतलब अक्षरों को ऐसे जोड़ा कि कोई शब्द नहीं बनता था अक्षरों को जोड़ने से, और ऐसे 7-8-10 पन्ने लिख लिए, है ना। तो ऐसे वैसे लिखने के बाद अध्यापक ने देखा और उसको पास करा दिया। क्यों पास करा दिया, ये बोला कि इतना सब लिखने के लिए, पहले तो इतना इतना कष्ट लिया लिखने के लिए, इतना 7-8 पन्ने भरे तो सही, और दूसरी बात ऐसे लिखने के लिए काफी बुद्धि चाहिए, इतना शुद्ध बकवास लिखना भी आसान नहीं है, है ना। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग कभी कभी आपस में प्रतियोगिता रखते थे। तो एक प्रतियोगिता ऐसी होती थी कि आपको लगातार 2 मिनट या 4 मिनट बोलना है, लेकिन आप बोलेंगे तो एक वाक्य उसके बाद दूसरा वाक्य, है ना, ऐसे बोलेंगे ना लगातार, तो दूसरा वाक्य जो होगा उसका बिल्कुल कोई संबंध ही होना चाहिए पहले वाक्य से, और जो तीसरा होगा उसका संबंध पहले 2 वाक्यों से नहीं होना चाहिए, और चौथा वाक्य होगा पहले 3 वाक्यों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, करके देखिए आप, और जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलना है आपको। तो बकवास भी करना है तो आसान नहीं होता है, इतना बुद्धिमानी से करना पड़ता है। तो अध्यापक ने सोचा कि काफी बुद्धि लगाई है, ये बच्चा बुद्धिमान है, इसलिए पास करा दिया उसको। तो उसी प्रकार से भले हमारे हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं हो, लेकिन शुक्री थोड़ी बहुत कुछ तो होनी चाहिए। जब भगवान देखते हैं कि कुछ तो है, फिर वो बहुत देते हैं, शुद्ध भक्त भी बहुत देते हैं। तो ये है अहितु की कृपा, मतलब जो मिलना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी तुलना में उनको बहुत ज्यादा मिल गया। तो प्रभुपाद जी आगे यहां कहते हैं कि ये जो रुचि भक्तों को प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं भगवत कथा में, ऐसी रुचि अन्यों को नहीं आती। उदाहरणार्थ जो लोग मुनि वगैरह होते हैं, जो दार्शनिक चिंतन करते हैं, मनोधर्म से आगे सब बातें करते हैं, तर्क वितर्क में अपना समय बर्बाद करते हैं, है ना, तो ऐसे लोग। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई जब मुनि होता है तो वो किसी बात को स्थापित करता है कि यह सत्य है, फिर उससे कोई बड़ा तार्किक आता है और उसको गलत साबित करता है और अपना तथ्य जो है वो सामने रखता है, फिर तीसरा कोई बड़ा आदमी आता है, पहले 2 को गलत साबित करता है, फिर अपनी बात को आगे रखता है। तो ऐसे तर्क के आधार पर जो किया जाता है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है, ऐसे इस पद्धति से सत्य की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए एक श्लोक है, बता सकते हैं इस संदर्भ में कौन सा श्लोक है? हाँ बताइए, पूरा श्लोक, पूरा श्लोक। तर्क तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नासा वृषीर मतिर्य भिन्नम, और फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः सपन्था। आपने ये तो सुना होगा, महाजनो येन गतः सपन्था, तो ये हितोपदेश का श्लोक है। इसमें बताया गया है तर्क अप्रतिष्ठ, कि केवल तर्क के माध्यम से आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी अच्छे निष्कर्ष पर आप पहुंच नहीं सकते। श्रुतयो विभिन्न, जो शास्त्र है वो अनेक है, और क्या आप सोचेंगे केवल शास्त्रों को पढ़ के मैं सत्य को जान पाऊंगा, ये भी संभव नहीं है। नासा ऋषिर मतिर न भिन्नम, बहुत सारे ऋषि और मुनि होते हैं जिनके भिन्न मत होते हैं, और हरेक व्यक्ति अपने अपने मत को स्थापित करने की चेष्टा करता है, कभी एक मुनि जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, ऐसे चलते रहता है। तो ऐसे पथ को स्वीकार करके सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो कैसे हो सकती है? कहां है सत्य? सत्य छुपा हुआ है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, भक्तों के अंतःकरण में वो छुपी हुई है, इसलिए वो तत्व हमें भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए महाजनों ये न गतः सपन्था, इसलिए उस पथ पे चलो जिस पे महान वैष्णव चले हैं, महाजनों के पद चिन्हों में चलो। तो ये तात्पर्य है इसका कि ऐसे तार्किक लोगों के पथ पे हमें नहीं चलना है, बल्कि हमें भक्तों के पद चिन्हों में चलना है, और ऐसा करने से रुचि हमें प्राप्त होगी, रुचि प्राप्त होने से हम अधिकारी व्यक्ति बन जाएंगे भक्ति के लिए। तो ये दूसरा विषय है इस अध्याय में। पहला विषय पहले पैराग्राफ में ये था कि भक्ति के तीन श्रेणियां होती हैं, और दूसरा भाग ये है कि भक्ति के लिए अधिकार वो क्या है? रुचि है, जो कि पूर्व जन्मों के सुकृति से प्राप्त होता है। और इसके बाद अब 20वें पन्ने से अब अगला विषय शुरू होगा, जो हम अगली बार करेंगे। बस अगली बार यहां भी साधन भक्ति वगैरह का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी शुरू करते हैं। तो साधन भक्ति की परिभाषा क्या है और इसका वर्णन क्या है, हम अगली बार देखेंगे। और फिर वैधि भक्ति, साधना भक्ति, और आगे चल के केवल कई अध्यायों तक वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति का वर्णन होगा। ठीक है, तो कोई प्रश्न टीका? स्वीकार स्वीकृति दोनों दोनों चाहिए। जब तक सुकृति नहीं होगी वो बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि होते हुए भी भगवान की कृपा चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर सुकृति है, रुचि है, और वो भक्तों को ढूंढ रहा है, जब तक भक्त मिलेंगे नहीं वो प्रगति करेगा कैसे? तो भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल जाता है उसको, तो खुद की भी सुकृति और भगवान की कृपा दोनों का महत्व है। दोनों एक साथ में होते हैं। जैसे माता यशोदा ने जब कृष्ण को बांध दिया था उखल से, और वो रस्सी दो उंगली कम पड़ जाती थी हर समय, तो वैष्णव आचार्य बताते हैं कि दो उंगली का कम पड़ जाने का मतलब है कि दोनों चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए, स्वयं अपने अपना प्रयत्न और दूसरा भगवान की कृपा। माता यशोदा केवल प्रयास कर रही थी, लेकिन कृष्ण ने कृपा नहीं की थी इस समय, इसलिए वो कृष्ण को बांध नहीं पाई। जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा बहुत थक गई हैं, पसीना आ गया है, तो उनको दया आ गई, उस समय तुरंत वो रस्सी से बांध पाए वो कृष्ण को। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। हाँ मत हो सकते हैं किसी के द्वारा जिनका मन कमजोर कैसे होता है, जब कोई नशीले मादक पदार्थों का सेवन करता है ना, ऐसे लोग ड्रग्स आदि पीते हैं, शराब पीते हैं वगैरह, इससे क्या होता है, बुरी आदतों से उनका मन वगैरह कमजोर हो जाता है। ये तो एक गलत धारणा है कि केवल भावुक लोग, इमोशनल लोग, सेंटिमेंटल लोग भक्ति में आते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो ज्ञान मार्ग में जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान की परिपूर्णता ही भक्ति है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञान की सफलता है कि हम कृष्ण को समझें और समझने के बाद उनकी सेवा करें। तो बुद्धि वगैरह चाहिए सांख्य के लिए, विश्लेषण करने के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता में कि सांख्य योग मतलब सृष्टि के जड़ को ढूंढ निकालना और भक्ति मतलब जड़ की सिंचाई करना। सिंचाई किए बगैर आपका पेड़ उगेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि जड़ कहां है, अब कहां पानी देंगे? तो भक्ति में दोनों आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। सांख्य भी, योग भी, सारे पद्धतियां भक्ति में, आपको भक्ति के अन्यों के फल भक्ति में प्राप्त हो जाएंगे आपको। इसलिए केवल भावुक लोगों के लिए भक्ति है ऐसा नहीं है। भक्ति उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसी सुकृति पूर्व जन्मों में प्राप्त कर ली है और जो बहुत भाग्यशाली है। बुद्धि योग कहते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसे तो भगवद गीता में तो हर अध्याय में भरे हुए हैं, ऐसे कितने सारे भगवद गीता में तो हर अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएंगे। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति, असम्मूढ़ मतलब बिना कोई संशय के, तो जो मुझे बिना संशय के जान लेता है स सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। और फिर क्या करता है, सर्वभावेन भारत भजति, वो पूर्णतया भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, मतलब भक्ति में लग जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान के बारे में, वो सर्वज्ञ हो जाता है और ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो भगवान की भक्ति करता है। मतलब भक्ति ही ज्ञान की परिपूर्णता है। हाँ,
मैंने पढ़ा कि शुद्ध भक्ति से पाप नष्ट हो जाते हैं,
केवल शुद्ध भक्ति के पहले, सबसे पहले साधन भक्ति के भी शुरुआत में, प्राथमिक स्तर में ही नष्ट हो जाते हैं। वो क्रम से जहां तक आप प्रगति कर पाए वहां तक। इसका भी विश्लेषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ में किया, माधुरी कादम्बिनी में, कि भक्ति के कौन से स्तर तक किन प्रकार के अनर्थ या पाप नष्ट हो जाते हैं। भाव भक्ति में पहुंचने तक भी थोड़े बहुत कलमश कण मात्र रह जाते हैं। 100% तो प्रेम भक्ति में हो जाते हैं, परंतु प्राय हो जाते हैं। हम भागवत क्लास के पहले कौन सा श्लोक बोलते हैं, पूरा श्लोक बोलिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। इसका मतलब बताइए, हर एक शब्द का मतलब बताइए। अच्छा, तात्पर्य बताइए फिर, अर्थ बताइए।
जो अभद्र जो हमारा हृदय है, नित्यम भागवतम का मतलब श्रवण करने से सारा साफ हो जाएगा। नष्ट प्राय नित्यम भागवत भगवती उत्तम श्लोक है, भागवतम उत्तम श्लोक भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नष्ट भक्ति में निष्ठा है, पूरी लग जाए, पूरी निष्ठा है,
सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभद्र सब नष्ट हो जाएगा। एक शब्द है प्रायेषु, प्राय नष्ट हो जाएगा, मतलब
इतना है तो शायद
मतलब थोड़ा रह जाएगा क्यों निष्ठे की भक्ति में अभी तक शुद्ध भक्ति में पहुंचे नहीं है, निष्ठावान हो गए हैं, निष्ठे की भक्ति है, अभी तक आगे बढ़ना है और भी है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो नित्यम भागवत सेवया करने से क्या होगा, प्राय जो प्राय जितने भी अभद्र चीजें हैं हमारे हृदय के अंदर वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे थोड़े हैं जो अभी तक आसानी से नहीं जाते, जैसे कभी आप बर्तन साफ करते हैं तो प्राय साफ हो जाते लेकिन थोड़ा सा इधर उधर रह जाता है, उसको और घिस के निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से और चेतो दर्पण मार्जन करना पड़ेगा, फिर वो निष्ठा की भक्ति से और आगे बढ़ जाएंगे। निष्ठा से रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम, फिर आगे चल के फिर सब खत्म हो जाएगा, सारे दुर्गुण, सारे अभद्र चीजें खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने पूछा था हर एक शब्द का अर्थ बताइए।
देखा जाता है कि आज के समय में जो स्त्रियां होती है तो उसमें क्या वास्तव में प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति मतलब वही संप्रदाय के द्वारा ही पास प्राप्त हो सकती है या और कहीं बाहर भी इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का अक्सर लोगों को प्राप्त होता है?
क्यों आप पूछ रहे हैं? क्या प्लान्स हैं आपके?
क्योंकि हम जिस प्रकार से
अभी प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में से जुड़कर हम वैकुंठ जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये साफ है, स्पष्ट है। परंतु अगर हम दो चीजों की का विश्लेषण करेंगे, एक तो उनका दर्शन क्या है और दूसरा कि ऐसे आचार्य उनमें हैं या नहीं है, ये दोनों चीजें हमें देखनी चाहिए। पहली बात, ज्यादातर लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। अभी तक जितने वैष्णव संप्रदाय हैं ज्यादातर लक्ष्मी नारायण के भाव में, ऐश्वर्य भाव में, वैकुंठ भाव में उपासना होती है। तो ऐसे उपासना से, भक्ति से हम वैकुंठ जगत को प्राप्त कर सकते हैं परंतु गोलोक वृंदावन को नहीं। ऐश्वर्य भाव से भगवान की भक्ति होगी, लेकिन विशेष करके अगर हमें शुद्ध प्रेमा भक्ति जो वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलकर प्राप्त करना है तो इसके लिए विशेष करके ये गौड़ीय संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है और विशेष करके कलयुग में अगर हमें राधा कृष्ण को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समझना होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे भी संप्रदाय हैं जैसे निम्बार्क संप्रदाय हैं वगैरह जो राधा कृष्ण को मानते हैं, परंतु इतनी स्पष्टता से जैसे षड गोस्वामी ने हमारे संप्रदाय में दिया, इतना स्पष्ट ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं षड गोस्वामी, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है और उनके पद चिन्हों में चलते चलते प्रभुपाद जी ने हमें आधुनिक काल के लिए ये सारे सुंदर ग्रंथ दिए हैं, साधारण भाषा में लिखे हुए। तो प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो यही एकमात्र संप्रदाय है जिससे हम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, काफी लेट हो गया, अभी कल मिलेंगे। ठीक है, कल 3:30 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। गौर प्रेमानंदे।